कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्री। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम ज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। जन्माष्टमी के महामहोत्सव में आप सबका स्वागत है। कह सकते हैं द्वितीय जन्माष्टमी महोत्सव। हम जन्माष्टमी मना चुके हैं लेकिन भगवान की जो ये जन्म का उत्सव है ये हम कभी भी मना सकते हैं क्योंकि भगवान जो है उनका जन्म तो होता ही नहीं है। भगवान तो अनादिकाल से है, है कि नहीं? क्या आप सोचते जन्म भगवान जो है मथुरा के जेल में जब देवकी के यहाँ जन्म लिए थे तो उसके पहले भगवान नहीं थे? थे कि नहीं थे? हाँ या ना? मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। थे तो फिर आप कैसे जन्माष्टमी के दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाते हो? तो पहले भी थे, है कि नहीं? तो भगवान का जन्मोत्सव तो हम रोज ही मना सकते हैं क्योंकि भगवान तो अनादिकाल से है, थे और रहेंगे। और भगवान का अगर जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं तो जितने बार हम भगवान का नाम लेते हैं वो भी एक उत्सव जन्मोत्सव ही है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने जिह्वा से भगवान का नाम लेते हो कृष्ण, बोलिए अब क्या हुआ? जब आपने बोला कृष्ण तो कृष्ण यहाँ प्रकट हुए क्योंकि शास्त्र में क्या बोला गया है? भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जितने बार आप बोलते हो कृष्ण भगवान तो प्रकट हो गए, तो ये भी तो भगवान का जन्मोत्सव हुआ है ना। तो भगवान का कृष्ण गीता में बोलते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कोटा। भगवान कहते हैं कि मैं यहाँ कब कब मैं यहाँ आविर्भाव होता हूँ? जब जब साधुओं को उद्धार करना है और दुष्टों को शिक्षा देना है, उनको जो है पनिश करना है। प्रभुपाद जी उस श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर बताते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान तो भक्तों को सुख देने के लिए ही आते हैं। जब भगवान भक्तों को सुख देने के लिए आते हैं तो साथ साथ में जब आए ही है तो दुष्टों का संहार करते हैं। लेकिन दुष्टों के लिए भगवान को आविर्भाव होना जरूरी नहीं है। समझते हैं बात को? जो देवाधिदेव है, जो भगवान है, उसको क्या जरूरत है आके दुष्टों से फाइटिंग करने के लिए? वो तो अपने संकल्प मात्र से या अपने सुदर्शन चक्र को भेज दे दुष्टों को पनिश करने के लिए। लेकिन वो आते हैं भक्तों के प्रेम से, प्रेम के लिए। अगर आप भगवान के कोई भी अवतार के बारे में पढ़िए तो आप सुनेंगे कि वो भगवान का अवतार हुआ है भक्तों के प्रेम के लिए। नरसिम्हदेव रूप में भगवान आए, किसके बुलाने से आए? प्रहलाद के बुलाने से आए। भगवान कृष्ण के रूप में आए, किसके बुलाने से आए? आपको पता है देवकी और वसुदेव अपने पूर्व जन्म में कौन थे? हाँ, सुतपा। और उन्होंने क्या किया? भगवान से प्रार्थना की, जे हमको आप चाहिए हमारे पुत्र जैसे। तो उनकी प्रार्थना के लिए भगवान आए, कंस को मारने के लिए नहीं आए। कंस को तो ऐसे भी किसी को भी भेज के मार सकते थे। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान कितने भक्तों को प्रेम करते हैं, भक्तों के लिए वे आते हैं। एक साधारण उदाहरण आपको बताती हूँ। अगर आपके कोई रिलेटिव्स विदेश में रहते हैं और आपकी बेटी की शादी है, तो आप अपने रिलेटिव्स को बुलाएंगे, भाई आइए हमारी बेटी का शादी अटेंड करिए। तो अब बहुत दूर अमेरिका से वो लोग आए हैं आपकी बेटी का शादी अटेंड करने के लिए। तो वो लोग सोचेंगे जब 2 साल के बाद इंडिया आए हैं तो हमारा जो डिफेंस कॉलोनी में फ्लैट है, चलो उसका भी सफाई कर लेते हैं। तो पड़ोसी क्या बोलेंगे? देखिए शर्मा जी 2 साल बाद अमेरिका से आए अपना फ्लैट साफ करने के लिए। क्या ये सही है? वो तो आए हैं शादी अटेंड करने के लिए, जब आए ही है तो फ्लैट को साफ कर रहे हैं। तो भगवान को अगर कोई ऐसा बोले कि भगवान आए हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, तो ये गलत बात होगी। वो तो साइड है, बाय प्रोडक्ट है। आए तो है भक्तों को प्यार करने के लिए, भक्तों को प्यार देने के लिए। साइड बाय साइड जब आए हैं तो राक्षसों का भी वध करते हैं। तो भगवान आते हैं भक्तों के लिए। तो जब हमारे लिए कोई आता है तो हमें भी रेसिप्रोकेट करना है ना। आपके बुलाने पे अगर कोई गेस्ट आपके घर में आते हैं तो आप क्या करते हो? मुंह चढ़ा के अंदर चले जाओगे? नहीं, आप भी रेसिप्रोकेट करोगे। तो भगवान आए हैं भक्तों के लिए। अब ये डिसाइड करना है कि हम भक्त है कि असुर है, क्या है हम? अब वो हमारा अपना अपना डिसीजन। अगर हम भक्त है तो हमें रेसिप्रोकेट करना है, क्योंकि भगवान आए हैं हमारे लिए, है कि नहीं? हाँ, बहुत लोगों को ये अटपटा सा लगता है, बोलते ही आपके भगवान आते ही रहते हैं क्या? हाँ, हमारे भक्त लोग जब बाहर प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए या फंड रेस करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं आपका क्या साल भर कुछ ना कुछ होता रहता है? अभी आप बोले रथ यात्रा, हमारे जगन्नाथ स्वामी को हम जो है रथ में घुमाएंगे। अभी बोलते हो जन्माष्टमी, जन्माष्टमी हो गया बोलते हैं अभी राधाष्टमी, फिर राधाष्टमी हो गया तो बोलते हैं अभी हम दशहरा का मेला करेंगे, दशहरा हो गया तो बोलेंगे दीपोत्सव, फिर बोलेंगे कार्तिकोत्सव। अब कार्तिकोत्सव को थोड़ा कुछ डोनेशन दीजिए प्रभु जी, अब वो खत्म हो गया तो बोलेंगे मैराथन मंथ, वो गीता ले लीजिए, गीता डिस्ट्रीब्यूट करिए। वो खत्म हो गया तो वैकुंठ एकादशी आ गया, बहुत ग्रैंड से मनाना है। वो हो गया तो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, वो हो गया तो रामनवमी, वो हो गया तो नरसिंह चतुर्दशी। बोले हो गया आप शांति? बोलते नहीं प्रभु जी, जून आ गया, रथ यात्रा आइए। तो बहुत सारे बोलते ये क्या है, आपके भगवान आते ही रहते हैं। बीरबल को अकबर एक बार पूछ रहे हैं, बोलते आपके भगवान आते ही रहते हैं क्या? हमारे भगवान एक ही बार, एक ही नाम, एक ही भगवान। आपके भगवान कभी राम बन के तो कभी श्याम बन के आते ही रहते। उतना उनको आने की क्या जरूरत है? वो तो इतने भगवान तो मतलब सबसे बड़े है ना, वो चाहे तो किसी को भेज दे। नहीं नहीं, हमारे भगवान जो है भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों को जो है मारने के लिए, बोलते उसके लिए तो किसी को भी भेज सकते हैं, उनको आने की क्या जरूरत है? तो फिर बीरबल ने क्या किया, अकबर को एक दिन नौका विहार में लेके गए। सब प्लान किया हुआ था पहले से। जब नौका विहार में लेके गए तो पास में और एक नौका चली जा रही है और उसमें अकबर का जो पोता है आया के साथ में खेल रहा है। अब ऐसा एक ड्रामा किया कि वो बच्चा जो है आया के हाथ से स्लिप होके पानी में गिर गया। जैसे वो पानी में गिर गया वैसे अकबर ने भी दे छलांग लगाई एकदम पानी में और अपने पोते को बाहर निकाला। तो फिर बीरबल ने पूछा कि जहापना शहनशाह, आप तो इतने बड़े आदमी हैं, अगर आप बोल दे 2-4 नौकर सब खुद जाते हैं, आपको खुदने की क्या जरूरत है? तो तब अकबर बोलते हैं अरे बेवकूफ, वो मेरा पोता है, किसी के ऊपर मुझे विश्वास नहीं, वो गिर गया उस मोमेंट में मैं सोचूं किसको भेजूं, नहीं मुझे इमीडिएटली जो है खोदना है। तो बीरबल ने बोला उसी तरह से भी भगवान सोचते हैं, जब भक्त बुलाते हैं, हाँ कि मेरे भक्त ने बुलाया है मुझे अभी जाना है, इसको भेजू उसको भेजू, वो सब सोचने का मुझे समय नहीं है। हाँ, भगवान अपने भक्तों को प्रेम करते हैं और भक्तों के बुलाने पे भाग के आते हैं। आप श्रीमद् भागवतम की कोई भी कथा ले लीजिए, हाँ गजेंद्र मोक्ष की बहुत सुंदर कथा आती है, कैसे गजेंद्र बहुत सुंदर स्तुति करते हैं भगवान का, और जब गजेंद्र स्तुति करते हैं तब भगवान गजेंद्र को बचाने के लिए इतने व्याकुल हो जाते हैं, वो गरुड़ पे बैठ के गरुड़ को बोलते हैं जल्दी चलो जल्दी चलो। और आप सबको पता है गरुड़ का स्पीड कितना है, गरुड़ मन की स्पीड से चलते हैं, फिर भी भगवान बोलते हैं जल्दी करो जल्दी जाना है जल्दी जाना है, मेरे भक्त को बचाना है। तो गरुड़ जो है एकदम भागते भागते थक जाता है और बेहोश होके गिर जाता है। फिर भगवान क्या करते हैं, एक हाथ से गरुड़ को अपनी एक भुजा पे ले लेता है और गरुड़ को लेके लेके फिर भागता है, लेकिन भागना बंद नहीं करते कि भक्त के पास जाना है। रास्ते में धोती निकल जाती तो एक हाथ से धोती को पकड़े एक हाथ से गरुड़ को पकड़े और भाग रहे अपने भक्त को बचाने के लिए। तो भगवान अपने भक्तों के लिए बहुत आतुर रहते हैं कि मेरा भक्त, भगवान तो वेट करते हैं कब मुझे बुलाएगा, तो मैं तैयार हूँ आने के लिए। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ तब भगवान आए, उनको बचाया, उनको साड़ी का दान किया। जब महाभारत का पूरा युद्ध खत्म हो गया और युधिष्ठिर और कृष्ण बैठे हुए थे तो द्रौपदी ने बोला कृष्ण आपसे एक शिकायत है, आपसे एक बात पूछनी है। बोलते बताओ। बोलते हैं जब मेरा चीरहरण हुआ कुरु की सभा में, आप इतने देर से क्यों आए? अभी दुर्योधन का भाई जो है दुशासन जब मेरी साड़ी खींच रहा था आप आए, लेकिन आप देर से आए, आप देर से क्यों आए? तो भगवान ने द्रौपदी से पूछा, बोले तुम एक बार रिकैप करो, तुम क्या प्रार्थना कर रही थी? तो मैं प्रार्थना कर रही थी कि हे कृष्ण द्वारकावासी द्वारकाधीश आप जल्दी से हस्तिनापुर आइए और मेरी रक्षा करें। तो कृष्ण ने कहा कि तुमने कहा द्वारकाधीश द्वारका से हस्तिनापुर आइए, मैं तो तुम्हारे बगल में ही खड़ा था, लेकिन बोला द्वारका से द्वारका गया और फिर वहां से हस्तिनापुर आया, टाइम तो लगेगा हमारे साथ है, हमारे पास है। हाँ, हम उस अनुभूति में रहे, उनको प्यार करे और उनका स्मरण करे तो वो हर वक्त हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन ना हम भगवान पे उतनी श्रद्धा रखते हैं, हमको विश्वास ही नहीं है कि भगवान है। अच्छा, भगवान सर्वव्याप्त है, भगवान सबके हृदय में है, भगवान हर अणु में है, वो तो छोड़ दीजिए। भगवान जो विग्रह में है वो भी आधी श्रद्धा है, 50-50% ब्रिटानिया 50-50 है कि नहीं है? अगर मेरे सारे विशेष पूरे करते हैं तो फिर है। बहुत सारे लोग हम सुनते ये मंदिर गए हैं कभी, वहां के विग्रह बहुत पावरफुल है। पावरफुल है मतलब वो जो मांगते हैं पूरा हो जाता है, तो बहुत पावरफुल है। ये मंदिर में गए हम मांगे हमारा पूरा नहीं हुआ तो पावरफुल नहीं। अरे भगवान तो सब समय है, हर विग्रह में हर जगह है भगवान। हा? हमारी श्रद्धा कितनी है। वृंदावन में एक बूढ़ी औरत बचपन से भगवान को लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, बहुत अच्छे से, हाँ बहुत सुंदर से सेवा करती थी। जब वो बूढ़ी हो गई, उसके बेटे की शादी हो गई, तो उसने बहू को बोला, बोला देखो तुम घर का काम ठीक करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल की सेवा तुम्हें बहुत अच्छे से करनी है। बोले ठीक है हम बहुत अच्छे से सेवा करेंगे। तो बूढ़ी हो गई थी, बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, तो उसकी बहू जो है निस दिन बहुत सुंदर सेवा करती थी, भगवान का अभिषेक करना पूजा करना। एक दिन अभिषेक करते करते हाथ से भगवान का विग्रह छूट गया और नीचे गिर गया। अब एकदम डर गई, वे सासू माँ ने तो देखा नहीं, बच गई नहीं तो बहुत डांट पड़ जाती थी। फिर विग्रह को जो है ठीक ठाक करके रख दिया। उस दिन शाम को सासू माँ ने बहू को बुलाया, बोले मेरे मन में कुछ अटपटा सा लग रहा है, मेरे लड्डू गोपाल मेरे लल्ला ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरे दिन फिर पूछा, बहू को थोड़ा सा गिल्ट कॉन्शियस हो गया, बोला बता देना ये ठीक है। बोला सासू माँ एक गलती हो गई, हाथ से जो है गिर गए गोपाल जी। और सासू माँ चिल्लाने लगी, बोले अरे गोपाल जी गिर गए, तुम मुझे बताए नहीं, इसीलिए मेरे मन में जो है कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम ऐसे करो जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, गिर गए ना कहीं लग गया होगा जरूर। बहू बोलती किसको बुलाए? तो डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को किस लिए? बोलते लग गया होगा उनको, गिर गए है जो। अपने पति को बताई, तो देखिए आपकी माँ बोलती है डॉक्टर को, कौन से डॉक्टर को बुलाए लड्डू गोपाल को देखने के लिए? मानती नहीं है। वृंदावन में जो भी डॉक्टर लोग हैं सबको बुला रहे हैं, तो सब हंस रहे हैं। तो क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? हम मेरे को बहुत सारे पेशेंट्स हैं, क्या करूंगा, जाके क्या देखूंगा? नहीं नहीं आप एक बार आइए, नहीं नहीं आप एक बार आइए। फाइनली एक डॉक्टर मान गया, बोला ठीक है चलिए चलते हैं आपके लड्डू गोपाल को देखते हैं। तो गोपाल जी को उसने देखा, ऐसे ऐसे देखा, रख दिया। और बूढ़ी मैया को बोला, मैया आपका गोपाल ठीक है, आप चिंता मत करो। मैया ने बोला, तुम डॉक्टर ही हो पक्का? हाँ मैं डॉक्टर हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ। मतलब मेरी की इतनी पढ़ाई मेरे को नहीं है, लेकिन मैं उतना तो जानती हूँ डॉक्टर मतलब कान में कुछ रखता है फिर ऐसे ऐसे करके देखता है। तुमने देखा ही नहीं, बिना देखे कैसे तुमको पता चल गया कि हमारे लड्डू गोपाल ठीक है? बोली यार ठीक है बाबा, यार रगाता हूँ। तो स्टेटोस्कोप लगाया और लड्डू गोपाल को चेक करने लगे। और क्या किया, क्या हुआ, क्या सुना? सच में विग्रहक में हार्ट बीट का वॉइस आने लगा। डॉक्टर तो वहीं बेहोश गिर गया। बोला अरे बूढ़ी मैया की भक्ति तो देखिए, हाँ छोटे से विग्रह के में से भी हार्ट बीट की वॉइस आ रही है। तो जे जथा माम प्रपद्यन्ते, अगर आप सोचते हैं ठाकुर जी है तो वो है, वो आएंगे उस विग्रह में आके आपकी सेवा को स्वीकार करेंगे। और आप सोचते नहीं ये एक मूर्ति है तो मूर्ति है। हमारा प्रेम भगवान के ऊपर में भगवान को खींच के लेके आता है। क्या भगवान को सेवकों की कमी है? ब्रह्मा जी बोलते हैं, चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षाभृतेषु सुरभिर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदम आदिपुरुषम तमाम भजामि। गोविंद भगवान की सेवा में कितनी सारी लक्ष्मियां, एक लक्ष्मी नहीं है, बहुत सारी लक्ष्मी भगवान की सेवा कर रही है। उतने सारे लक्ष्मियों की सेवा छोड़ के हमारी सेवा लेने के लिए क्यों आएंगे भगवान? अगर हमारे सेवा में प्यार है प्रेम है तो भगवान आएंगे। भगवान को कमी है? भगवान को वैकुंठ में खाने की कमी है? हमारा भोग लेने के लिए आएंगे? हमारे प्रेम के लिए भगवान आते हैं। अब श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अगर आप पढ़ो तो आपको आश्चर्य हो जाए कि ये भगवान है। इतना सा माखन के लिए गोपियां भगवान को नाच नचाती थी। बोला कान्हा माखन चाहिए तो नाचो, नाच के दिखाओ। बोला ऐसा नहीं, तुमको गोपी के वस्त्र पहनाएंगे। तो कृष्ण तो गोपी के वस्त्र पहना के, आंखों में काजल लगा के, लाली लगा के उनको नाच करवाते थे। तब जाके इतना नाचने के बाद बोलते एक गोपिका को कृष्ण बोलते हैं, पैरों में दर्द दे रहा है मैया, आप तो दे दो माखन, फिर थोड़ा सा माखन। बोला और एक बार नाच के दिखाओ। तो भगवान को जरूरत है नाच नाच के थोड़ा सा माखन के लिए, लेकिन प्यार के भूखे है, भाव के भूखे है। जब भक्त अगर प्यार से बुलाते हैं, प्यार से देते हैं, गोपी को भाव कैसा था? हमारे कृष्ण है, मेरा बेटा है, कोई सोचता मेरा भाई है, कोई सोचता हमारा पड़ोसी है, कृष्ण हमारा मित्र है। जब उद्धव को कृष्ण भेजते हैं वृंदावन नंद बाबा से, यशोदा से, गोपियों से मिलने के लिए, तब नंद बाबा और यशोदा बहुत रो रहे हैं। और उद्धव जो है वहां सबको पूछ रहे हैं कि भाई नंद बाबा और यशोदा का घर कहाँ है, कोई एड्रेस बताओ, राइट लेना है लेफ्ट लेना है। तो वहां पे एक गोपी बोलती है, नंद बाबा के घर के एड्रेस का क्या जरूरत है, वो तो तुम देख रहे हो पानी की धारा जो चली आ रही है। बोलता वो पानी कोई नदी का पानी नहीं है, कोई ड्रेनेज फूट गया उसका पानी नहीं है। यशोदा और नंद महाराज जो दिन रात रोते रहते हैं उनके अश्रु की धारा का पानी है। बोलता उसके पीछे पीछे चले जाओ, जहां से वो धारा शुरू होती वही नंद बाबा का घर। फिर उद्धव चले जाते हैं वहां पे, और नंद बाबा बूढ़े थे, बहुत रो रहे हैं, और यशोदा महारानी बहुत रो रही है, बोलते कि उद्धव साधारण जगत में भी अगर आपके रिश्तेदार में कोई मर जाता है तो आप उसको देखने के लिए आते हैं, तो हम कृष्ण को जो इतने पाल पोस के बड़ा किया, हम उसके विरह में मर जा रहे हैं, फिर भी कृष्ण हमको देखने क्यों नहीं आ रहा है। और फिर उद्धव जो है उनको फिलॉसफी समझाते हैं, बृहस्पति के शिष्य थे तो उनको पूरा फिलॉसफी समझाते हैं, बोलते आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आपका बेटा नहीं, वो जो है भगवान है। क्या है वो? क्या है वो? भगवान है। और फिर नंद बाबा उद्धव की तरफ देख के क्या बोलते हैं? बोलते मैंने तो सोचा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम तो बेवकूफ निकले, कृष्ण भगवान है, भगवान ऐसे होता है? भगवान का क्या मतलब होता है? भगवान मतलब जिससे तो यमराज भी डरता है। हमारे कृष्ण तो छोटा सा बिल्ली का आवाज सुनने से, मियाँ सुनने से यशोदा माँ की गोदी में आके बैठ जाता है, वो कैसे भगवान हो सकता है? तुम बोलते हो कृष्ण भगवान है, जो भगवान है उसमें एक क्वालिटी होती है अप्त काम, हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं रहती। लेकिन कृष्ण को तो जितना भी माखन खिलाओ और चाहिए, बोलता है मैया और दो, ये कैसा भगवान है? और भगवान मतलब, भगवान तो हमेशा सत्य बोलते हैं, कृष्ण तो बात बात पे झूठ बोलता है, झूठ का भंडार है, वो कैसे भगवान होगा? भगवान रोते हैं क्या? कृष्ण तो छोटी छोटी बातों में रोना शुरू कर देता है, भगवान डरते हैं? भगवान क्या रोते हैं? अब भगवान को क्या बांध सकते हैं? भगवान की माया से तो सब बंधे हुए हैं, जीव बंधे हुए, और वो तो यशोदा अगर रस्सी से बांध दे तो बंध जाते थे। तो हम तो सोचते थे तुम बहुत होशियार हो, तुम तो बहुत बेवकूफ निकले, वो क्या भगवान है? वो तो हमारा बेटा है। तो जिस तरह से भगवान वृंदावन में भक्तों के साथ व्यवहार करते थे, उन्हें मानने में बहुत मुश्किल लगता था कि भगवान भगवान हो सकते नहीं, कृष्ण तो हमारे पुत्र है। बहुत ही निखालस, बहुत ही शुद्ध प्रेम था उनको, कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए था, वो सिर्फ कृष्ण को प्रेम करना चाहते थे। हम तो कृष्ण से सब कुछ चाहते हैं, हमारे जीवन में अगर कुछ रॉन्ग हो तो सबसे पहले हम किसको दोष देते हैं? भगवान को। कुछ भी गलती हो जीवन में, कुछ भी प्रॉब्लम हो, सब ही इज रेस्पॉन्सिबल, उनको देखना चाहिए था ना, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। हम तो भगवान को सोचते हमारे ए टू जेड सप्लायर, बेटी की शादी भी करवानी है, सैलरी भी जो बढ़ानी है, तो भगवान ही, सब कुछ भगवान को देखना है। और फिर अच्छा सा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी बना लेते हैं, 15 रुपए का नारियल, 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना चाहिए, हम तो आपको नारियल चढ़ाए, भगवान से हम जो है बिजनेस करते हैं। लेकिन वृंदावन वासी हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो तो भगवान से भगवान को ही मांग लिए है, भगवान से भगवान को मांग लो, बाकी सब चीज तो ऐसे ही आ जाती है। एक पुराण में बहुत सुंदर कहानी आती है, एक राजा बहुत दानी, तो सबको बोलते आइए जिसको जो दान लेना है लेके जाइए, तो कोई जमीन मांगता है, कोई सोना मांगता है, कोई गाय मांगता है, तो एक बूढ़ा आदमी बोलता है मुझे एक ही चीज चाहिए, आप हमारे साथ आइए, हमारे घर में आप एक दिन रहिए। राजा बोलता तुम बड़े बेवकूफ हो, मैं तुम्हारे घर में आऊंगा एक दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमको क्या मिलेगा? कुछ और मांग लो, इतने गरीब हो, फटे फुटे कपड़े पहने हुए हो, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आइए मेरे घर में, मेरे साथ एक दिन रहिए, और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने बोला ठीक है दे दूंगा। अब मंत्री लोग को चिंता होनी शुरू हो गई, राजा उसके पास में, उसके घर में एक दिन रहेंगे, मतलब घर तो टूटा फूटा है, तो इमीडिएटली वो लोग उसके घर को रिपेयर करके एक अच्छा सा भवन बना दिए। अब राजा उसके साथ एक दिन रहेगा तो राजा को खाना तो पड़ेगा, तो खाना पड़ेगा तो राजा को तो ताजा ताजा सब्जी चाहिए, तो ऐसे किया आसपास का जो भी 15-20 एकड़ जमीन थी उसको दे दी, वहां पे जो है फार्मिंग शुरू कर दिया, सो दैट राजा आए तो ताजी ताजी सब्जी हो। अब राजा उसके घर जाएंगे तो कम से कम उसके कपड़े वपड़े तो ठीक होने चाहिए, तो उसको अच्छे कपड़े दे दिया, सोना दे दिया, चांदी दे दिया। अब राजा उसके घर में एक दिन रहेंगे तो सेवक चाहिए, तो सेवक दे दिए। अब राजा उसके घर में जाएंगे तो रास्ता अच्छा बनाना पड़ता है, हमारे भी सीएम आते हैं तो टूटा फूटा रास्ता भी ये लोग रिपेयर कर देते हैं, हम भी इंतजार करते कब आएंगे, टूटा फूटा रास्ता भी रिपेयर कर दिया। फाइनली वो जो दिन नियुक्त किया गया था, राजा उसके घर आए, राजा उसके घर आके ढूंढ रहे कि वो आदमी कहाँ गया, वो जो भिखारी जो हमारे लिए, वो तो मैं ही हूँ, अरे तुम तो मुझसे भी सुंदर लग रहे हो, हाँ ये तुम्हारा घर है और तुमको क्या चाहिए। फिर राजा बोला तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। राजा को मांग लिया, बाकी सब पैकेज में मिल गया। तो हमें भी भगवान से भगवान को मांगना चाहिए, भगवान को मांग लो तो बाकी सब अपने आप ही। जब भगवान को हम मांगते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का जप करते हैं और भगवान हमारे हृदय में आके जब बैठते हैं, तब अपने आप भगवान ही उस जगह की सफाई कर लेते हैं। क्योंकि हमारे हृदय में इतना कचरा भरा रहता है, मोह का, असूया का, ईर्ष्या का, कितना कुछ भरा है, गुस्सा, लोभ, मोह। तो भगवान क्या करते, जब देखते कि वहां बैठने की यहाँ जगह ही नहीं, तो अपने आप सब क्लीन करना शुरू कर देते और फिर बैठ जाते हैं। तो भगवान से किसको मांगना है, भगवान से भगवान को ही मांगना है, भगवान से भगवान को मांगना है, भगवान को प्रेम करना है। हम लोग मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आंखों से हम लोग भगवान को देखते हुए भी नहीं देखते हैं, क्योंकि श्रद्धा से नहीं देखते हैं। भगवान को देखना मतलब श्रद्धा से देखना है, तभी तो देखना हुआ। सूरदास अंधे थे, सूरदास की कहानी जानते हैं? सूरदास के बारे में सुने हैं? सूरदास बहुत बड़े भक्त थे, अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन भगवान के ऊपर में उनकी इतनी भक्ति थी कि जब भगवान को तैयार करते थे तो भगवान ने कौन से रंग का कपड़ा पहना है उस रंग पे वो गाना शुरू कर देते। लोगों को बहुत आश्चर्य होता, ये तो अंधा है, देख नहीं पाता, अगर आज भगवान ने हरे रंग के कपड़े पहने हैं तो बस सुंदर सा गाना, ओ कृष्णा आज हरे रंग में आप इतने सुंदर लग रहे हो, और कभी पीला रंग पहना है तो पीला रंग पे गाना। तो पुजारी लोग सोचते हैं मन में कि जरूर कोई उनके कान में पहले ही बता देता होगा कि आज भगवान ने ये कपड़ा पहना है, ऐसे कैसे हो सकता है एक अंधा आदमी सिर्फ भगवान को देख पाता है। तो एक दिन ये लोग क्या किए, जानबूझ के भगवान को कुछ नहीं पहना है, ऐसे ही खड़ा रख दिए। और फिर सूरदास बाबा को बुलाया, आइए आइए दर्शन करिए। अब सूरदास ने फिर बहुत सुंदर एक भजन बुलाया, बोला तीनों लोक के नाथ आज बिना कपड़े के खड़े हो, हाँ क्या बात है, उस पे भी एक सुंदर गाना बना दिया। अब पुजारी लोग सब उसके पैरों पे गिर गए, बोले इसकी भक्ति के तो क्या कहने, हाँ है अंधा लेकिन भगवान को देख पाता है। हमारी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं फिर भी हम भगवान को नहीं देख पाते। रामानुजाचार्य के एक शिष्य होते थे कुरेश, तो उन दिनों में जब रामानुजाचार्य प्रचार करते थे, जो थोड़े मुस्लिम राजा थे या कुछ वो उनके विरुद्ध थे, तो उन्होंने एक बार क्या किया, उनके जो शिष्य कुरेश है उनकी दोनों आंखें निकाल दी। तो कुरेश तो बहुत अच्छे भक्त थे, भगवान से अगर मांगते तो उनकी आंखें उनको वापस मिल जाती, लेकिन कुरेश इतने शुद्ध भक्त थे उनकी कोई इच्छा ही नहीं थी। तो रामानुजाचार्य उन्हें फोर्स करते, अरे मांग लो मांग लो, तुम भगवान से कुछ तो मांग लो। तो जितने बार उनको जबरदस्ती ऑल्टर के अंदर भेजते वो कुछ और मांग के चले आते, इसका कल्याण करो, उसका कल्याण हो, इसका कल्याण हो, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं मांगते। इस बार उनके गुरु ने उनको बोला, नहीं तुमको जो है मांगना ही पड़ेगा, तुम कुछ मांगो भगवान को। तो फिर कुरेश फाइनली भगवान से मांगते हैं कि मुझे आप आंखें दीजिए, लेकिन इन आंखों से मैं सिर्फ आपको देख पाऊं और मेरे गुरुजी को देख पाऊं, मुझे और कुछ नहीं देखना है। तो भगवान ने उनको आंखें दी, बट वो आंखों से वो ओनली विग्रह को देख पाते और अपने गुरुजी को देख पाते। तो ये देखिए, आंखें नहीं है वो भी देख पाते हैं, हमको आंखें होने से भी हम भगवान को नहीं देख पाते। आंखें होने से कितनी बार ऐसा होता है कि हम मंदिर जाए भगवान का दर्शन करें और उसके बाद अगर आपको कोई पूछ ले कि आज ठाकुर जी ने कौन से रंग का कपड़ा पहना था, याद नहीं है। कोई नहीं, आपके साथ में आपकी पड़ोसी गई थी ना, उसने कौन से रंग की साड़ी पहनी थी, रेड विद ब्लू पोल्का डॉट्स, सिंपल। साथ ही साथ में बोल देंगे आप, वो एकदम याद रह जाता है कि हाँ उसने ये साड़ी पहनी थी, इसने ये किया था, लेकिन ठाकुर जी ने कौन सा कपड़ा पहना था वो याद नहीं। हमारे इस्कॉन विशाखापट्टनम केंद्र में गवर्नमेंट से परमिशन आने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो बड़ा जो मंदिर हम बनाने की चेष्टा कर रहे थे वो अभी हॉल्टेड है। तो मीनवाइल एक शेड दे के हमने छोटा सा मंदिर, इतना भी छोटा नहीं, यहाँ पे 400-500 लोग बैठ सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, आने के बाद में पूरा घूमते हैं भगवान की तरफ, देखते घूमते, फिर पूछते मंदिर कहाँ है, मंदिर 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 कहाँ है, यहाँ मंदिर, ये है मंदिर, अच्छा ये मंदिर नहीं, मंदिर मंदिर बड़ा मंदिर। अरे तुम मंदिर में आते हो तो तुम क्या देखने आते हो? मंदिर में आने का मतलब है मंदिर में जो देवता है उनका दर्शन करना है। वो तो सामने 4 फुट के इतने लंबे खड़े हुए है। नहीं मंदिर 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 कहाँ है मंदिर? उसका मतलब तुम देखना चाहते हो आर्किटेक्चर, अच्छा सा मार्बल है कि नहीं, कितना करोड़ रुपए खर्च किया, कितना बड़ा मंदिर बनाया। हाँ हम लोग अच्छा मंदिर बहुत अच्छा था, हमने दर्शन किया। अच्छा विग्रह कैसे थे? वो पता नहीं, मंदिर अच्छा था, बहुत सुंदर। 4 घंटे लाइन में खड़े रहे, मार्बल देखने लायक था, एकदम इटालियन मार्बल था। फायदा क्या है? मंदिर में देखना है मंदिर के देवता को, उसीलिए हम मंदिर जाते हैं। मंदिर के बाहर ही आर्किटेक्चर देखने के लिए नहीं। भगवान के पास अब जब जाते हो दर्शन करने के लिए, बहुत ही विनम्र भाव से हाथ जोड़ के भगवान के चरण कमल को देखते हुए ऊपर की ओर उनके मुखारविंद को देखते भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। और इतने अच्छे से भगवान को देखना चाहिए। और देखने के बाद क्या करना है? हर एक मंदिर के बाहर में एक जगह रहती है, सीढ़ियां होती है कुछ मंदिर में, कुछ मंदिर में प्लेटफॉर्म जैसा होता है बैठने के लिए। वो जगह किस लिए बनाई गई है? कि वहां बैठ के गॉसिप करे कौन आया मंदिर में, कौन नहीं आया। नहीं, वहां बैठ के फिर आंख बंद करनी है। बंद करके क्या क्या सोचना है? अभी जो अंदर मैंने विग्रह का दर्शन किया वो मेरे मन में बस गए हैं कि नहीं? अब मैं कभी भी आंख बंद करूं तो उनका मुखारविंद देख पाती हूं कि नहीं? अगर आंख बंद करने के बावजूद नहीं दिखते हैं तो फिर और एक बार जाओ, फिर दर्शन करके आओ। दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग दर्शन। वो है भगवान को दर्शन करने का तरीका। बहुत नहीं, मंदिर जाते तो 1 मिनट बैठना पड़ता है, ये सिस्टम है। तो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट ऐसे करके टच करते बैठते और फिर उठ जाते। अरे उसका मतलब तो समझो कि मंदिर जब जाते हो 1 मिनट बैठना है, मतलब श्री विग्रह की मूर्ति को आपके हृदय में बसा लेना है कि फिर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे जब आप दर्शन करने के लिए जाओ तब तक ये पूरा वीक आप भगवान की उस मूर्ति के बारे में दर्शन कर सको, विचार कर सको, है ना। भगवान के जगह में दर्शन करने जाना मतलब भगवान को देखना, भगवान को अपने मन में बसाना। वृंदावन में बहुत एक प्रसिद्ध मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर। उस मंदिर में आप दर्शन करने जाओ तो बहुत रश होता है, एकदम धक्कम दुक्की, बहुत मुश्किल से जाते हैं। तो एक बार, बहुत सालों पहले की बात है, एक भक्त अंधे थे और बेचारे नियम से रोज जो है बांके बिहारी का दर्शन करने जाते थे, रोज इतने धक्कम धुक्की में भी जाते और दर्शन करके आ जाते। तो एक दिन ना 4-5 युवक लोग उस बाबा की मजाक उड़ा रहे थे। बोले बाबा दूसरे लोग इतना कष्ट करके जाते हैं दर्शन में, उसमें कोई मतलब है कि भाई वो जाते हैं भगवान को देखते हैं, आप तो अंधे हो, आपको तो दिखाई भी नहीं देते बांके बिहारी, फिर आप क्यों इतना मुश्किल करके सबको धक्का मारते मारते जाते हो? तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोलते मैं तो अंधा हूँ लेकिन बांके बिहारी तो अंधे नहीं है ना। बांके बिहारी तो अंधे नहीं है, वो देख रहे हैं कि मैं आया हूँ, वो देख रहे हैं कि मेरा भक्त मेरे दर्शन करने आया है। मंदिर में हम जब जाते हैं हम भगवान को देखना ही नहीं, भगवान भी हमारी ओर देखते हैं कि हाँ मेरा भक्त आया मेरे लिए। और समझने की बात तो ये है कि हम अगर भगवान का दर्शन करें उसमें कुछ होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अगर भगवान की आंखें हमारे ऊपर पड़ जाए हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान के शरीर चिन्मय है, चिंतामणि है, उनके शरीर का हर भाग शक्ति प्रदान करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान को आपको आशीर्वाद देना है तो हाथ ऐसा रखना पड़ेगा। वो अगर आंखों से आपकी तरफ देख ले तो भी आपको आशीर्वाद दे दिए, आंखों से आपकी तरफ देख लिए तो भी आपके सारे पाप नाश हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है हम जब मंदिर जाए तो हम भगवान की तरफ प्रेम से देखें और हम 1 मिनट खड़े रहे कि ठाकुर जी भी हमारे तरफ देखे, उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बरसाए। तो ये है मंदिर में जाने का, भगवान को प्रेम करना सीखना है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे पिताजी माताजी मंदिर जाने के लिए बोल रहे हैं तो जाना है, दादाजी दादी जी जाते थे तो जाना है, उसके पीछे का जो अर्थ है नहीं समझते हैं। क्यों जाना है मंदिर? एक यांत्रिकता आ गई है, बस मैकेनिकली, जैसे दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, पार्टी जाना है, ये जाना, हफ्ते में एक दिन कभी मंदिर भी चले गए, ₹10 हुंडी में डाल दिए, एक नारियल फोड़ दिए और अपने दोनों गालों को यहाँ मारा और यहाँ मारा, बस हो गया, हम और कभी पाप नहीं करेंगे, या तो हम जो पाप किए उसको आप माफ कर दो, बस हो गया, उसके बाद टर्न होके चले जाओ, भूल जाओ उसके बारे में। भगवान हमको सब दिए है, भगवान की तरफ एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। थोड़ा सा हमारा कोई नेबर पड़ोसी हमको मदद करे तो हम 10 बार सोचते, अरे इसने हमारी मदद की, हमको इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर भगवान, भगवान तो हमको सब कुछ दे रहे हैं। आज आप जो सांस ले रहे हो, कौन देता है सांस लेने के लिए हवा, कौन देता है? ये जो हम सनलाइट यूज करते हैं, सूरज की रोशनी यूज करते हैं, कौन देता है? अगर कभी सूर्य भगवान हमसे गुस्सा हो जाए और हमको इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दे, भर पाएंगे हम लोग? कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं हम, लेकिन सब फ्री, सब कुछ फ्री, पीने का पानी फ्री, सांस लेने के लिए हवा फ्री, रोशनी फ्री, कितना कुछ भगवान देते हैं, लेकिन हम भगवान को एक बार भी धन्यवाद नहीं जनाते हैं। हम आजकल के क्या है फिलोसफी, हम किसी का बुरा नहीं करते, हम किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करते, हम आई एम ओके, आई एम फाइन, मैंने किसी से कुछ नहीं लिया, ना मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ, मैं अपना काम। अरे कैसे तुम बोल सकते हो तुमने किसी से कुछ नहीं लिया? तुम जब हवा ले रहे हो वो भगवान की है, है कि नहीं? तो भगवान को धन्यवाद बोलना तो बनता है। तो ग्रैटिट्यूड में रहना है, हमारी जो पूरी एग्जिस्टेंस है भगवान से है, ये बात हमें समझनी है। और भगवान को कैसे हम भगवान को धन्यवाद बोले, प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल सिस्टम बताया है। ये जो मानव जीवन है, ये जो मनुष्य जीवन है, बहुत रेयर है। इस जीवन में, इस शरीर में ही हम भगवान को समझ सकते हैं। एक पशु नहीं समझ सकता है भगवान क्या है, एक पशु भागवत या गीता नहीं पढ़ सकता है। जब हमको ये मानव जीवन मिला है तो हमें इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है समझना है। रूपा जी बहुत सिंपल बताया है, बोले भगवान का नाम जप करो, भगवान का प्रसाद लो, शास्त्र पढ़ो और अपना जीवन का कार्यक्रम जैसे चल रहा है वैसे करना है। कोई ज्यादा बड़ा मॉडिफिकेशन नहीं है। बहुत लोगों को इस्कॉन भक्तों से डर लगता है, अरे इस्कॉन में जाएंगे तो हमको सब छोड़ना पड़ेगा, हम सन्यासी बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कर रहे हो आप करिए अपना, बस इतना ही है कि पाप मत करिए, पाप मत करिए। आप जो अपना डेली ड्यूटीज कर रहे हैं करिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम उच्चारण करिए। भगवान के नाम में रामायण में बहुत सुंदर एक कथा आती है, कैसे एक राजा भूल से एक ब्राह्मण की हत्या कर देता है। जब ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो भागा भागा अपने गुरु के आश्रम में जाता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे से तो भूल हो गई, ब्राह्मण की हत्या हो गई। गुरु जी वहां होते नहीं है, तीर्थ यात्रा पे गए हुए होते हैं। तो गुरु जी का बेटा बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ क्या करना है, मुझे एक 15 मिनट का समय दीजिए। तो गुरु जी के बेटा क्या करता है, सारी पुस्तकें निकालता है, यहाँ वहां सब कुछ पढ़ता है, 15-20 मिनट के बाद बोलता है हाँ मुझे समझ में आ गया, आप कैसे पश्चाताप कर सकते हैं, बोलते बताओ क्या करना है। बोलता ऐसे करिए, राम का नाम 3 बार लीजिए। कितने बार? राम राम राम, आपके सारे पाप जो है नाश हो जाएंगे। टू बी ऑन द सेफ साइड ये 5 बार ले लेता है, चलो 3 बार तो 5 बार ले लिया। अब घोड़े पे बैठ के जो है जा रहा है, जब जा रहा है तो उसके गुरु जी मिल जाते हैं रास्ते में। बोलता अरे तुम कहाँ से आ रहे हो? बोलता आपके आश्रम से। गलती हो गई, ब्राह्मण हत्या हो गई, आपके बेटे से बात हो गई, मुझे बता दिया कि 3 बार राम का नाम लो और आपके जो है पाप ये हो जाएंगे। इसको बहुत गुस्सा आता है, तो तुम श्योर मेरे बेटे ने ऐसा बोला? तो आपके बेटे ने ही बोला, उसने ऐसा बोला कि 3 बार राम नाम लेने से? आपके बेटे ने ही बोला 3 बार राम नाम लेने से? बोला ऐसे आदमी को तो टंगा देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए इस राज्य से। बोला क्यों ऐसा किया? बोलता नहीं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बोलता क्या गलती कर दिया? बोलता उसकी हिम्मत तो देखो, वो बोलता है 3 बार, 1 बार राम नाम लेने से ही काफी था, उसको राम नाम पे श्रद्धा नहीं है। उसने बोला 3 बार लेना पड़ेगा, 1 बार नाम लेता तो काफी, देखिए उसको राम पे श्रद्धा नहीं है। तो राम के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। इस कलयुग में अगर हमें भगवान को और जो आप खाते हो डिफिकल्ट नहीं है, उसमें कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। आप जो बनाते हो घर में वो थाली में डालो और भगवान के पास रखो, भगवान का नाम लो, भगवान वो भोग को जब स्वीकार करते हैं तो उसके बाद में आप ले लो, हो गया। नहीं उतना भी हमारे पास में ये नहीं है तो भगवान गीता में बहुत अच्छा बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम द्वये यो मे भक्त प्रयच्छते। पत्रम, पत्रम मतलब पत्ता होता है, एक पत्ता हमको अर्पण करो। पुष्पम फूल, फूल हमको अर्पण करो। पत्रम पुष्पम फलम, फल, फल दो हमको। तो यह मतलब पानी, उतना तो कहीं भी मिल जाता है, आपके डिफेंस एरिया में भी तो मिल जाएगा, पत्ता मिल जाएगा, फूल मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, उतना ही भगवान को दो तो भगवान खुश। क्योंकि भगवान को वो नहीं चाहिए, भगवान चाहते आपका प्यार, भगवान चाहते कि आप उनको याद करो। भगवान कोई महंगी चीज नहीं मांगते है। आजकल के दुनिया में आपके रिश्तेदार जो है, आपके फ्रेंड्स जो है, आप अगर उनको कोई गिफ्ट दे दो तो सबसे पहले गिफ्ट का बिल चेक करेंगे, है कि नहीं, कितने का है, कौन सी दुकान से लिया है कि नहीं। भगवान आपका बिल नहीं चेक करेंगे, ये मिठाई कौन से दुकान से लेके आया, प्यार से बनाई है, मैं ले लूंगा। इस श्लोक में भगवान बोलते हैं अश्नामी प्रयतात्मना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं अश्नामी मतलब एक वर्ब है, अश्नामी मतलब मैं खाऊंगा। तो कोई पत्ता को खाता है क्या, कोई पुष्प को खाता है, लेकिन भगवान ऐसे क्यों बोलते हैं अश्नामी, क्योंकि भगवान इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, तुम प्यार से दे रहे हो मैं खा लूंगा, तुम प्यार से दे, जो दे वो मैं ले लूंगा, जो दोगे मैं खा लूंगा। उतना भगवान खुश हो जाते जब कोई प्यार से देता है। एक तुलसी का पत्ता भगवान को बहुत प्रिय है, सबके घर में एक तुलसी का कुंडा होना ही चाहिए। द्वारका कांड में एक बहुत अच्छी कहानी आती है। आप सब जानते हैं कि सत्यभामा का स्वभाव थोड़ा सा तीखा, जानते हैं, सुना है, हाँ, बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है, बहुत ज्यादा भगवान को अपने वश में रखना चाहती है। तो एक दिन नारद मुनि सत्यभामा के साथ बहुत मजाक करते हैं, बोलते हैं देवी रानी सत्यभामा, आपको पता है आपको जो चीज बहुत पसंद है अगर आप उसका दान दो तो आने वाले जन्म में भी आपको वो चीज मिलेगी। बोलता अच्छा, बोलता हाँ इसीलिए तो लोग अन्नदान करते हैं, अन्नदान करेंगे तो आने के वाले जन्म में उनको कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जिसको जो चाहिए, कोई कपड़ा दान करता है, कोई कन्यादान, कोई अन्नदान करता है, तो आप भी अगर उस चीज का दान करो तो आने वाले जन्म में आपको भी वो चीज मिलेगी। तो आपको सबसे प्रिय क्या है? सत्यभामा सोचती सबसे प्रिय मुझे कृष्ण है, और कोई नहीं। बोले ठीक है, फिर कृष्ण का कोई ब्राह्मण को दान करो तो आने वाले जन्म में जो है आपको कृष्ण मिलेंगे। इस बार तो आपको 16,108 से शेयर करना पड़ रहा है, वो शेयर भी ना करना पड़े, एक्सक्लूसिवली आपको मिल जाएंगे। और सत्यभामा ने बोला कि किसी और को मत बताना, जो मुझे बता दिया बता दिया, और किसी रानी को ये बात मत बताना, इतना सुपर आइडिया दिया मैं अभी करती हूँ, पर किसको करो, ब्राह्मण। नारद मुनि बोलते देवी आप हमारा अपमान कर रहे, मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, ब्राह्मण हूँ, मुझे दे दीजिए। बोला अरे आप कितने अच्छे हैं, आप तो सब कुछ करके आए, एकदम अरेंजमेंट करके आइए, बैठिए फिर आपको दान देते। तो कृष्ण को बुलाए है सत्यभामा और सब विधि विधान करके जो है कृष्ण को नारद मुनि को दान दे दी। प्रोसेस खत्म हो गया। अब नारद मुनि कृष्ण को बोले इधर आओ, ये पकड़ो मेरा वीणा, ये पकड़ो मेरे करताल, चलो मेरे पीछे। सत्यभामा आई, बोला कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी अभी तो दान दिया ना, अभी मैं लेके जा रहा हूँ कृष्ण को। नहीं पर ये तो मेरे पति है। बोलते हाँ नेक्स्ट लाइफ में मिलेंगे ना, इस लाइफ में मुझे दोगी तो नेक्स्ट लाइफ में तुमको मिलेंगे, अब तो मेरा हो गया ना। बोलते अरे ये तो आप मेरे साथ चीटिंग किया। बोलते चीटिंग क्या, आप ब्राह्मण को दान दिया, मैं लेके जा रहा हूँ। अब कृष्ण को बोले अरे तुम रुक जाओ। बोलते मैं कहाँ से रुकू, अभी तो मुझे दान दे दिया, आप तो यही मेरे मालिक है, मुझे तो जाना है उनके पीछे। अब नारद मुनि जो है कृष्ण से अलग अलग काम करवाना शुरू कर दिए। बोलो मेरे शिष्य जाओ 10-12 घर में जाओ, भिक्षा करके आओ, हम दोनों खाएंगे। तो कृष्ण जा रहे हैं सब जगह जाके भिक्षा मांग रहे हैं। अब दूसरी रानियां भी भाग भाग के आई, बोले ये तो बहुत गलत काम हो गया, द्वारका के नाथ, द्वारकाधीश भगवान अब सब जगह जाके भिक्षा कर रहे हैं, सत्यभामा तुमने अच्छा नहीं किया। अब सत्यभामा भी रो रही है, रानियां भी रो रहे हैं, सब नारद मुनि के पांव पकड़ लिए, बोले नारद मुनि हो गया, गलती हो गया, ये हम सोचे नहीं थे, जो हो गया सो हो गया, तुम भूल जाओ, कृष्ण को मुझे वापिस दे दो। नारद मुनि बोलते देखिए आप शास्त्र पढ़े नहीं है क्या, ब्राह्मण को एक बार दान देने के बाद वापिस लेंगे तो आपको बहुत पाप लगेगा। बोले पाप लगेगा तो लगेगा, वापिस दे दो। बोलते पर मैं देना नहीं चाहता ना, ये कुछ नहीं हो सकता, आप यहाँ से जाइए। अब रानी लोग रो रही है, रो रही है, नारद मुनि के घर के आगे पीछे घूम रही है। फिर नारद मुनि ने बोला ठीक है, जब तुम लोग इतना रो रही हो, बोले कोई तो इसका सोल्यूशन होगा, आप देखिए कुछ पुस्तक खोलिए जरा, देखिए कुछ देखिए। नारद मुनि कुछ कुछ पुस्तक निकाले, विचार किए, बोला हाँ कुछ तो हो सकता है, क्या हो सकता है, तो ऐसा करिए अगर आपको ये दान वापिस चाहिए तो आपने जो मुझे दान दिया है कृष्ण को उसके समान अगर आप मुझे सोना दे दे तो मैं कृष्ण को छोड़ दूंगा। बोले इतनी सी बात है, अभी करते हैं, साथ ही साथ में जो है तुला दान का सब अरेंजमेंट किया है, और वो जो त्रास होता है एक त्रास में भगवान को बिठा दिया है और दूसरे त्रास में जो है सोना। अब जितना भी सोना डालो, जितना भी सोना डालो, भगवान का त्रास तो थोड़ा बहुत भी ऊपर नहीं हो रहा है। और ये द्वारका रानी ये सब चिंता कर रही है कि करे तो क्या करे, कितना सोना डाल दिया। फिर नारद मुनि के पास जाते हैं, नारद मुनि बोलते हैं आप लोग द्वारका की रानी है, हो गया खत्म आपका खजाना, बस इतना ही डालिए और डालिए। तो अंत में तो ये रानियां क्या की, अपने शरीर में जो थी सब निकाल निकाल के डाल दी, अब तो कुछ भी नहीं बचा, फिर भी कृष्ण का त्रास जो है हिलता नहीं है। और फिर ये रानियां सब रुक्मिणी के पास जाती है, बोलता अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तो रुक्मिणी ने बोली इतनी सी बात है, अभी हम आते हैं। तो रुक्मिणी ने क्या किया, तुलसी का एक पत्ता लिया और उस सोने पे, सोना सब निकालो, ये पत्ता यहाँ रखो, भगवान का त्रास ऊपर चला गया। तो छोटा सा एक तुलसी का पत्ता भगवान को जो है ये कर सकता है, काबू में कर सकता है। भावग्राही कुछ नहीं चाहिए भगवान को, सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। रुक्मिणी देवी ने जो प्रेम से तुलसी के पत्ते को रखा, भगवान जो है हल्के हो गए। तो भगवान मांगते पत्रम, पत्ता, तुलसी का पत्ता मुझे दो, प्रेम से दो, पुष्पम। बहुत सुंदर आंडाल की कथा आती है साउथ इंडिया में, आंडाल नाम की एक बहुत अच्छी भक्त थी, वो क्या करती थी, भगवान को रोज फूल का माला बना के देती थी, लेकिन फूल का माला बनाने के बाद में वो माला को खुद पहन लेती थी। क्यों खुद पहनती थी, देखने के लिए कि हाइट ठीक से है कि नहीं, दिखने में माला ठीक है कि नहीं, माला के बीच बीच में कोई कहीं कोई काटा तो नहीं है, भगवान को चुभेगा तो नहीं, वो सब चेक करती थी और फिर माला को भगवान को देती थी। तो एक बार आंडाल के जो पिताजी होते हैं विष्णुचित, वो देख लेते हैं और बहुत डांटते हैं आंडाल को, बोला तुम ऐसा करती हो, भगवान को अपना माला पहनाती हो, गलत करती हो तुम, उसको तो तुम और माला बनाने की तुमको जरूरत नहीं। और विष्णुचित खुद अपने हाथ से माला बनाते हैं और वो माला बना के जब भगवान को देते हैं, भगवान के गले में रुकती ही नहीं, माला गिर जाती है। जितनी बार दूसरी बार माला बना के लगाते हैं, फिर माला जो है टूट जाती है, फिर माला टूट जाती है। वे भगवान विष्णुचित के सपने में आके बोलते हैं कि मुझे तो आंडाल की माला ही चाहिए, और वो भी उसकी पहनी हुई माला चाहिए, क्योंकि उसमें उसका प्यार है। तुम्हारी माला कितनी भी अच्छी हो, ऑर्किड्स हो उसमें, महंगा से महंगा फ्लावर भी हो, अगर उसमें प्यार नहीं है तो भगवान को कुछ भी दे उसमें प्यार होना चाहिए। न्यूज़पेपर खरीदते हैं हम लोग ₹4 में ₹5 में कितने पेजेस न्यूज़पेपर आता है, 20-25 पेज 30 पेज आ जाता है। ₹1,000 का नोट लीजिए, ₹1,000 में सिर्फ 1,000 का छोटा सा नोट, और ₹5 में आपको कितने पेजेस मिलते हैं, 30 पेजेस। तो आप क्या लेंगे, 30 पेजेस चाहिए या आपको 1,000 का नोट चाहिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। यहाँ ज्यादा पेजेस दूंगी, 30 और बड़े बड़े साइज के, या छोटा सा इतना सा पेपर दूंगी फिर भी आपको वही चाहिए, क्या है उसमें और इसमें फर्क क्या है। गवर्नमेंट का जो छाप है, गवर्नमेंट का छाप पड़ने से ये कितना कॉस्टली बन गया, और ये इतना बड़ा बड़ा होने के बावजूद भी। तो भगवान के लिए अगर प्यार है और प्रेम का छाप अगर हमारी वस्तु में हम दे देते तो वो एकदम अनमोल हो जाती है, एकदम उसकी कोई और वैल्यू नहीं है। तो पत्र, पुष्प, फल, भगवान को फल दो, कैसे भी फल, सबरी ने तो झूठे फल दिए थे। सबरी का वृत्तांत जानते हैं ना, खाके खाके देती थी, राम राम बोलती थी। और क्यों खाके देती थी? क्योंकि उसको चिंता थी कि ये फल मीठे है कि नहीं, कहीं खट्टे फल भगवान को ना दे दूं, तो एक एक फल को चख चख के देती थी। हमारे गुजरातियों में बहुत सुंदर एक भजन है जहाँ पे हम गाते हैं कि लोग बोलते हैं कि सबरी ने झूठे फल खिलाए, लेकिन वो फल झूठा कैसे हुआ? क्योंकि उसके जीभा पे तो राम का नाम था, और जब जीभा पे राम का नाम है तो अंदर में राम बैठे हैं, तो राम ही तो चख रहे हैं। राम ने झूठा कहाँ से खाया? जीभा के ऊपर में राम का नाम था, तो राम तो बैठे ही थे जीभ पे, तो जब वो चख रही थी तो अंदर से तो कौन चख रहा था? राम चख रहे थे, तो झूठा फल कहाँ खिलाया भगवान को? तो प्रेम चाहते है भगवान। आप खाएंगे किसी का झूठा फल? खाएंगे? भगवान खाएंगे। प्रेम है तो खाएंगे, भगवान प्रेम चाहते हैं। तोयम पानी दीजिए, पानी भगवान उतना ही। कुछ लोग बोलते रहे हम भगवान को क्या देंगे, भगवान इतने बड़े हैं। पर दोगे तो भगवान के ऊपर में जो आपका प्यार है उसे कैसे व्यक्त करेंगे? आज के डेट में हमारे बच्चे कभी आते हैं, बोला मम्मी 20 रुपीज दे दो, 100 रुपीज दे दो। क्यों? नहीं आपका बर्थडे है ना, इसलिए आपको एक गिफ्ट देना है। देते हैं कि नहीं हम लोग? अरे हमारा ही पैसा हम नहीं खरीद सकते क्या? फिर भी एक प्यार है कि बच्चा जाएगा एक पेन लेके आएगा, एक लेके आएगा, मम्मी आपका बर्थडे है, तो हमको कितना अच्छा लगता है। उसी तरह से सब कुछ तो भगवान का ही है। हरिद्वार में जब गंगा की पूजा करते हैं तब क्या करते हैं? गंगा में से पानी लेके गंगा को ही डालते हैं, बोलते हैं कि ये पानी का आप जो है स्वीकार करिए, है कि नहीं? भगवान के पास तो सब कुछ है, लेकिन अगर हम देंगे प्यार से तो भगवान को अच्छा लगता है। हमारे प्यार के लिए भगवान भूखे है, तो हमें प्यार से देना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। नहीं भाई, हम बहुत गरीब हैं, हम एक तुलसी पत्ता भी नहीं दे सकते, हम भगवान को फल भी नहीं दे सकते, हम भगवान को फूल भी नहीं दे सकते, तो और एक भी सोल्यूशन है। और ठीक है, ये सब भी नहीं दे सकते तो अपना मन दे दो, मन से भगवान के लिए कुछ करो। अरे मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं है। मैंने बहुत सुंदर एक पुराण में कहानी आती है एक ब्राह्मण की, जो बहुत गरीब था, इतना गरीब कि उसके पास खाने के लिए कुछ पानी भी कुछ भी नहीं। तो वो क्या करता, रोज सुबह आंखें बंद करके इमेजिन करता था कि मैं भगवान के लिए खीर बना रहा हूँ, अभी मैंने दूध को गर्म किया, उसमें मैंने चावल डाला, वो ये तो मेरी खीर पक गई, अब थोड़ा शुगर डाला, थोड़ा ये डाला, थोड़ा वो डाला। और फिर एक दिन वो ऐसे ही खीर बनाते बनाते सोच रहा है, अरे खीर तो तैयार हो गई, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, इलायची भी डाली है, अब भगवान को देना है, लेकिन देने से पहले एक बार देख लूं कहीं खीर ज्यादा गर्म तो नहीं है। तो उसने क्या किया, इमेजिनेशन में अपनी उंगली खीर के अंदर डाली, खीर बहुत गर्म थी और उंगली जल गई, और आंख खोल के वो नाचने लगा, मेरी उंगली जल गई, मेरी उंगली जल गई। आसपास के सब नेबर्स आके बोले कैसे उंगली जल गई, यहाँ तो ना गैस है ना कुछ है, कहाँ से तुम्हारी उंगली जली? और उसने दिखाया सच में उंगली जली हुई है। तो बोले नहीं, मैं भगवान के लिए खीर बना रहा था, खीर बहुत गर्म थी, मेरी उंगली जल गई। तो अगर हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते तो मन से तो ये विचार कर सकते कि मैं भगवान के लिए, भगवान को तो उतना ही काफी है। अगर आप भाव से भगवान को दो, भगवान को उतना ही काफी है। तो हमें भगवान को जो है भोग धरना है, भगवान का नाम लेना है, शास्त्र का अध्ययन करना है। ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। हम लोग कोई भी सत्संग में जाओ, कोई भी शास्त्र पढ़ो, हर जगह सब एक ही बात बोलते हैं कि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर बोलते हैं अपने भजन में कि जिसको मानव जन्म मिला लेकिन फिर भी उसने राधा कृष्ण की पूजा नहीं की, तो उसने क्या किया, जानबूझ के पॉइजन खा लिया। जानिया सुनिया, लोग बता रहे हैं अरे भाई तुम गलती कर रहे हो, सुन रहा हूँ समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं भगवान की पूजा नहीं कर रहा हूँ, तुम जानबूझ के पॉइजन को खा रहे हो, विष पी रहे हो। तो ये मानव जीवन मिलना बहुत रेयर है। 84 लाख स्पीशीज में हम लोग घूमते हैं और अभी एक मानव जन्म हमको मिलता है, और बहुत रेयर है। तो इस मानव जन्म को हमको उपयोग करके भगवान के बारे में जानना है, समझना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अभी तो बहुत दिन जीना है, इतनी भी क्या जल्दी है, जब बूढ़े बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारा शरीर में शक्ति नहीं है तब हम लोग चल के मंदिर जाएंगे, जब आंखों में दिखाई नहीं देता तब भगवान को देखेंगे, जब मुंह से और ठीक से बोला नहीं जाता तब जप करेंगे, जब कानों में सुनाई नहीं देता तब सत्संग सुनेंगे, तो क्या फायदा होगा। अभी अभी करना है, अभी करना है, समय को वृथा नहीं करके अभी जानना है भगवान के बारे में। जो आप पूरा दिन करते हो वो आपको रात में स्वप्न के रूप में आता है, उसी तरह से पूरा जीवन जो करोगे वो अंत काले प्रयाण समय जब इस शरीर को छोड़ोगे तब वो मन में आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अभी से भगवान का नाम लें। बहुत सुंदर एक भक्त बोल रहे थे कि इतना जप करो, इतना भगवान का नाम लो दैट लॉर्ड फील्स ऑब्लिगेटेड टू कम। इतना मतलब ये करो कि भगवान विवश हो जाए, अरे मेरी इतनी प्रार्थना करना है, मुझे तो आना ही है। बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते हैं ना कि ऐसा अंत समय हो कि भगवान का मुख हमको दिखाई दे, मुंह में तुलसी का पत्ता हो, गंगा का जल हो। लेकिन ये सिर्फ भजन गाने से नहीं होगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। भगवद गीता में बोला गया है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम। आप जब मरण काल में अंत समय जिस चीज के बारे में याद करोगे वही शरीर आपको प्राप्त होगा। अगर पूरा जीवन हम हमारे परिवार कुटुंब फ्रेंड सर्कल पार्टी जॉब ऑफिस सोचते रहेंगे तो अंत काल में भी वही याद आएगा। अंत काल में सडनली आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो। एक बूढ़ा आदमी हॉस्पिटल में मर रहा था, हॉस्पिटल में जब मर रहा था तो मरते मरते पूछ रहा है, बोलते मेरे बड़ा बेटा कहाँ है, बोलते पिताजी मैं यही हूँ, बोलते छोटा बेटा कहाँ है, बोलते पिताजी मैं भी यही हूँ, बोलते मजला वाला कहाँ है, बोलते मैं भी यही हूँ, तुमको मिले सब लोग यहाँ है तो दुकान में कौन है। अरे तुम मर रहे हो भाई, तुम मर रहे हो, लेकिन अभी भी वो क्या सोचता है दुकान में कौन है। तो इतना आसान नहीं है जो हम सोचते हैं कि मैं पूरा जीवन में जो मर्जी करूंगा, ये कितना, ये तो बहुत सिंपल बात है। जब मेरे को मेरे फैमिली मेंबर्स और पसंद नहीं करते हैं, वॉचमैन के जैसे रखेंगे तब मैं जाऊंगा भगवान की भक्ति करने के लिए, उतना आसान नहीं है। एक पुराण में बहुत सुंदर कथा आती है एक आदमी के बारे में। उस आदमी के बच्चे लोग बोलते हैं कि पिताजी आप बूढ़े हो गए, अब आप रिटायर हो जाना चाहिए, आप तीर्थ यात्रा में जाइए, लेकिन इसको बिजनेस के ऊपर बहुत आसक्ति है। नहीं 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 नहीं, तुम लोग बच्चे हो तुमको क्या पता, मैं सब ठीक करूंगा। नहीं नहीं पिताजी आप तीर्थ यात्रा पे जाइए। तो एक भक्त को बुलाते हैं, बोलता देखिए हम आपको जो है थोड़ा डोनेशन दे देते हैं, हमारे पिताजी को ले जाइए और पूरा तीर्थ का यात्रा करवा के लेके आइए। तो ये भक्त लेके गया है, सबसे पहले वृंदावन लेके गया। तो जब वृंदावन लेके गया तो ये बोलता है अरे वृंदावन में तो बहुत धूला मट्टी है, मुझे तो ये जगह पसंद नहीं आया, इतने सारे गाय है, देखिए यहाँ बिल्कुल क्लीनलीनेस नहीं है। बोलो कोई नहीं प्रभु जी, चलिए जगन्नाथपुरी चलते हैं। जगन्नाथपुरी लेके गया, बोले अरे यहाँ पे तो बहुत प्रसाद का वेस्टेज हो रहा है, ये क्या है, मुझे ये ओरिया स्टाइल का प्रसाद मुझे पसंद नहीं है, मेरे को तो सांभर चाहिए इडली चाहिए, नहीं होगा। वो ठीक है, उसको द्वारका लेके गया और यहाँ भी पसंद नहीं है, अरे मुझे वापिस लेके चलो। वो आदमी फोन किया उसके बेटे को, बोला आपके पिताजी के साथ मेरे बहुत मुश्किल है, मैं उसको लेके आ जाता हूँ। बोलता नहीं नहीं ऐसा मत करिए, उसको थोड़ा और घुमाइए थोड़ा उसको जो। अंत में उसको काशी लेके गया, तो काशी में जो है हरिश्चंद्र घाट में जो है वहां पे शरीर को जो है मृत शरीर को डेड बॉडीज को जलाते हैं, तो वहां लेके गया। वहां जब लेके गया तो ये बंदा रोने लगा। तो इसने बोला चलो फाइनली मैं सक्सेसफुल हो गया। जब डेड बॉडीज को देखा तो अपने आप इसके मन में जो है एक ये आ गया होगा, वैराग्य उत्पन्न हो गया होगा कि अरे कभी ना कभी तो सबको मरना है, तो अंत में कम से कम ये रोया तो सही। तो शाम को ये जो है उसके पास जाके बैठा, बोला आप बहुत रो रहे थे आज, क्या बात है, आपके मन में कैसी भावना है। तो उसने बोला मेरे मन में ये भावना है कि पूरा जीवन मैंने कपड़े का बिजनेस किया, अगर लकड़ी का बिजनेस करता तो कितना कमा लेता। लकड़ी की जरूरत तो सबको पड़ती है क्योंकि मरना तो सबको है एक दिन, तो अरे मैं कितना पैसा कमा लेता अगर लकड़ी का बिजनेस करता। फिर बोला बापरे आपको चेंज करना बहुत मुश्किल है, आप घर चलिए। आसान नहीं है पूरा जीवन, हाँ हम बिजनेस में बिजी रहेंगे, हम पार्टीज में बिजी रहेंगे, हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स, आसान नहीं है। अभी से भगवान का नाम लेना, एक दिनाचार्य बनाना है, तभी जाके हम भगवान को अंतकाल में याद कर पाएंगे। और सपोज ऐसा हो कि आपने कोशिश की, आपने भगवान का नाम लिया, आपने सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ कि आप भगवान को नहीं याद कर पाए, तो भगवान बोलते हैं कि मैं खुद आके कान में मेरा नाम बोल के जाऊंगा। उतना भी भगवान प्रॉमिस करता है कि तुमने अगर पूरा जीवन मुझे याद किया और अंतकाल में ऐसा कोई सिचुएशन आ गया कि तुम मुझे याद नहीं कर पाए, तो मैं आके मेरा नाम तुम्हारे कान में बोल के जाऊंगा। तो उससे ज्यादा गारंटी क्या चाहिए हमको? भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है, सिर्फ भगवान को याद करना है। हम सबको भगवान की दया तो चाहिए। कोई है जो भगवान की दया नहीं चाहता है? ऐसा कोई है? दया चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? दया का उल्टा कर दो, याद। भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, भगवान की दया हम पे हमेशा बनी रहेगी। हमको भगवान की मर्सी चाहिए 24/7, चाहिए कि नहीं? कभी आप ऐसा बोलते हो कि भगवान मंडे टू फ्राइडे आपकी जरूरत नहीं है, सिर्फ सैटरडे संडे थोड़ा हेल्प कर देना। हर वक्त भगवान की मदद चाहिए। लेकिन जब भगवान को याद करना हो, जाएंगे एकादशी के दिन, जाएंगे कभी, भगवान को हम कभी याद करेंगे, लेकिन उनकी दया हम पे कंटिन्यूसली होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान को भी कंटिन्यूसली हमें याद करना है। तो ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, समय बहुत कम है। हमारे पुराणों में बोलते हैं कि हमारी सिचुएशन कैसी है, जैसे कोई आदमी जंगल में भाग रहा हो, और उस जंगल में जो आदमी भाग रहा है उसके पीछे शेर भाग रहा है, और ये आदमी भागता 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 एक झाड़ पे चढ़ जाता है। जब झाड़ पे चढ़ जाता है तो क्या देखता है? नीचे इस साइड में शेर है और इस साइड में नीचे छोटा सा कुआं है, कुआं में चार मगरमच्छ है। अब ये साइड से कूदेगा तो मगरमच्छ पकड़ लेंगे, नीचे उतरेगा तो शेर पकड़ लेगा। अब बहुत मुश्किल से झाड़ को पकड़ा हुआ है, झाड़ की जो शाखा होती है, डाली होती है, पकड़ा हुआ है, और फिर क्या देखता है? वो डाली के ऊपर में दो माउस, क्या बोलते हैं, चूहे, दो चूहे हैं, एक गोरा सा चूहा एक काला सा चूहा, और ये दोनों चूहे जो है उस डाल को कुतर रहे हैं, काट रहे हैं। तो कभी ना कभी ये डाल जो है पूरी पूरी कट जाएगी और ये नीचे गिर जाएगा। उस मोमेंट पे उसने क्या देखा? उस डाल के ऊपर में और एक डाल है, उस डाल में क्या है? मधुमक्खियों का एक छत्ता। हाँ, और मधुमक्खी के छत्ते में से मधु धीरे धीरे करके टपक रहा है, और ये अपना मुंह आ किए हुआ है और वो धीरे धीरे करके टपक रहा है। उसको बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलो कम से कम इतने सारे दुख में एक चीज अच्छी मिल गई। और उस समय वहां से एक आदमी चला जाता है रथ के ऊपर में और बोलता है, अरे तुम्हारा सिचुएशन तो बहुत खराब है, तुम मुझे हाथ दो, चलो मेरे साथ तुम चलो। फिर ये क्या बोलता है? बोलता, एक दो मिनट रुक जाओ, क्योंकि हर दो मिनट में वो मधु गिरने वाला है, एक दो मिनट रुक जाओ। अब ये बेवकूफी हुई कि नहीं हुई, है ना? तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी गुरु आते हैं, साधु आते हैं, शास्त्र है जो हमको बता रहे हैं कि ये मधुमक्खी का छत्ता के पीछे मत पड़ो, ये क्षणिक आनंद है, तुम यहाँ से बच के निकल जाओ। लेकिन हम सोचते, नहीं नहीं, ये जो हमको आनंद आ रहा है, ये शेर कौन है? ये शेर है मौत, जो सबको आने वाली है, डेथ। ये चार मगरमच्छ कौन है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसमें हम गिर जाते हैं। और ये दोनों चूहे कौन है? दिन और रात। सूर्य का जब उगना होता है सुबह, और शाम को जब सूर्य अस्त होता है, हमारे जीवन में एक दिन कम हो जाता है। हम लोग बड़े ही शौक से हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना, लेकिन ये तो दुख की बात है, मतलब यू आर सो मच क्लोज टू डेथ। आपके जीवन में और एक साल कम हो गया, आप मौत के पास जा रहे हो, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत खुश रहते हैं। अरे हमारा बर्थडे है आज, हमारा बर्थडे है आज, अरे बर्थडे, समझो बात को तो समझो। कभी कभी टेलीफोन में आप फोन लगाएंगे तो क्या बोलते हैं? आप कतार में है, कृपया इंतजार करिए, आप कतार में। हम लोग सब कतार में है, कहाँ जाने के लिए? यमलोक जाने के लिए कतार में है। लेकिन हम लोग को समझ, हमारी सिचुएशन कैसी हो, जो गोट होते हैं ना, गोट क्या बोलते हैं हिंदी में, बकरी, बकरी को जब हलाल करने के लिए ले जाते हैं ना, तो बकरी को पता नहीं चलता कि नेक्स्ट मेरी बारी है। वो बहुत प्यार से मैं करते करते घास खाती है, उसको पता ही नहीं चलता कि अब इसको काटने वाले हैं। वैसे हम सब भी कतार में हैं, नेक्स्ट हम ही है, लेकिन हम बहुत खुश, मैं हेलो हाय सैमसंग ग्रैंड नोट 3 आईपॉड, कितने खुश है हम लोग। आई एम सो बिजी, लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, बट तुम कतार में हो, तुम ये घास जो खा रहे हो तुम कतार में हो। किसी को भी ये बात बोलो तो अच्छा नहीं लगता, प्रवचन में कुछ अच्छा अच्छा बोलिए, करिए अच्छा अच्छा बोलिए, ऐसा क्यों बोलना। शादियों में जो जिसकी शादी होती है लड़का लड़की, वो लड़के के जो बहुत सारे दोस्त होते हैं एक दूसरे को बोलते हैं नेक्स्ट तेरी शादी, नेक्स्ट नेक्स्ट अब तेरी ही चांस है। लेकिन किसी के मौत के टाइम पे आप जाके अगर किसी को बोलो नेक्स्ट नेक्स्ट, एक थप्पड़ लगाएगा। पर वो सच है कि नहीं, नेक्स्ट तो हम लोग ही है ना, पर तभी नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, शुभ शुभ बोले ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पर शादी के टाइम पे तो आप बोलते तो बहुत शर्माते, हाँ नेक्स्ट तो मैं ही हूँ, नेक्स्ट तो मैं, नेक्स्ट तुम ही हो, तुम जिसके उसमें गए हो। मरने के बाद जो प्रोग्राम होता है तब अगर कोई बोल दे नेक्स्ट आप हो, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा। लेकिन ये सत्य है, तो ये लोगों को अच्छा नहीं लगता, बट ये ट्रूथ है जीवन का। हमारे पास समय कम है, हमें भगवान का नाम लेना है। तो और कोई कोई प्रश्न, कोई कुछ पूछना चाहेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा दामोदर भगवान की जय।